नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। बिहार में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने राज्य में सरकार गठन के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन और अन्य कई नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल पटना में मुलाकात की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान सरकार गठन के लिए चर्चा हुई।
जनता दल यूनाइटेड ने अपने सभी नवनिर्वाचित 85 विधायकों को पटना बुलाया है। कल जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए के पांचों घटक दल अलग अलग बैठक कर अपने विधायक दल के नेता चुनेंगे। इसके बाद सभी की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक दल की कल हुई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक आज होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
इस बीच विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरे हो गए हैं। पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये घोषणा की कि वे राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही हैं और लालू परिवार से सभी संबंध तोड़ रही हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला में अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस जारी कर कुछ दस्तावेज मांगे हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगाने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खुल गए हैं। 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में हुए विस्फोट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया था। सिक्किम सरकार ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से संवेदनशील स्थलों डोकलाम और चोला को इस वर्ष 15 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही पहली बार नागरिकों को इन उच्च सुरक्षा सीमा क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सिक्किम सरकार ने इस कदम का उद्देश्य साहसिक और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना बताया है। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के साथ वायुसेना अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। यह अभ्यास 27 नवंबर तक होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य वास्तविक संचालन वातावरण में सामरिक नीति और प्रक्रिया में सुधार लाना है। केरल में प्रसिद्ध शबरीमाला अयप्पा मंदिर मंडला मरक्का वेल्लुक तीर्थ के लिए आज खुल जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
सबरीमला मंदिर आज शाम 2 महीने चलने वाले मंडला मकर विलक्कू वार्षिक तीर्थ के लिए खुलेगा। ये तीर्थ यात्रा कल मलयालम महीने वृश्चिकम के आरंभ के साथ शुरू होगी। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 90,000 दर्शन स्लॉट उपलब्ध होंगे, जिनमें से 70,000 ऑनलाइन बुकिंग के जरिए और 20,000 तत्काल बुकिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। मंडल पूजा 27 दिसंबर को होगी और मकर विलक्कू उत्सव 14 जनवरी को होगा। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी करतार सिंह सराभा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करतार सिंह सराभा ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। और खेलों में ग्रेटर नोएडा में आज शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल टूर्नामेंट शुरू होगा। यह प्रतियोगिता 20 नवम्बर तक चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।